या बेटी उनको एक सिर दिखाते हैं, भुजाएं चार दिखाते हैं। और रावण को दस सिर दिखाते हैं और भुजाएं दुगनी दिखा देते हैं, यानी रावण के सहयोगी बहुत बन जाते हैं। लेकिन मत देने वाले भी अनेक हैं, एक सिर नहीं है, मत किससे दी जाती है? मुख से दी जाती है ना, बुद्धि में ही मत समाई हुई है ना। तो रावण को दस मत माने अनेक मत रावण को दिखाई जाती, और विष्णु का या महालक्ष्मी का रूप जो है वो अनेक मत चलाने वाला नहीं है, एक मत पर चलता है और सहयोग अपनी भुजाओं से देता। तो विष्णु है सहयोगी कारी, यानी विष्णु के रूप में जो पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं वो शिव बाबा के कार्य में सहयोगी तो बनती हैं, लेकिन अपनी अकल नहीं चलाती। और रावण संप्रदाय के क्या करते हैं, वो सहयोगी भी ज्यादा बनते हैं और अकल भी बहुत ज्यादा चलाते हैं। तो कहाँ परमात्मा की मत और कहाँ मनुष्य की अपनी मत, अंतर तो बहुत पड़ जाएगा। अरे जब समझते हो कि परमात्मा पाप आया हुआ है उसके जो विचार, तो उसी की मत मानो ना, फिर अपनी अकल क्यों चलाते हो, अपनी मत से फिर बनता धार हो जाता। तो महालक्ष्मी का पति भी होगा, दो भुजाएं जरूर नारायण की हैं। नहीं समझते कि लक्ष्मी नारायण दोनों इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, इस समय चल रही है, अभी चल रहा है या सब चल रहा है, ज्ञानियों का कंट्रोलर और ज्ञानियों की कंट्रोल करने वाली। तो जो ईश्वरी होगी उसको कोई शासित कर सकेगा ज्ञानी, उसकी वाचा को ज्ञान के आधार पर कोई बंद कर सकेगा नहीं। तो अभी संग निर्णय हो, तुम बच्चे हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ज्ञानियों की ईश्वर और ज्ञानियों की ईश्वरी। तो अभी संगम में नहीं चल रहा है क्या, चल रहा है तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी भी होने चाहिए या नहीं? जरूर कोई आत्मा ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में है जिनका मुकाबला ज्ञान के आधार पर कोई सामने आकर नहीं कर सकता, जैसे मम्मा बाबा का मुकाबला कोई ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं कर सकता था, वैसे अभी भी ज्ञान ज्ञानेश्वरी का ही पाठ चल रहा है यज्ञ के अंदर, राजराजेश्वरी का पाठ अभी नहीं चल रहा है। ब्राह्मण जो है वो राजा रानी अभी नहीं है, अपने को क्या समझे, हम सेवाधारी, ज्ञान की सेवा भले करें, कर्मणा सेवा भले करें, लेकिन हम किसी के ऊपर कंट्रोल करने वाले नहीं है। कोई मानता है बात तो ठीक, नहीं मानता है तो भी हमें सेवा करनी। तो इस समय तुम बच्चे ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, लक्ष्मी से सिर्फ पैसे मांगते हैं, जगदम्बा को कहते हैं सर्व आशाएं पूर्ण करने वाली है, और लक्ष्मी से सिर्फ क्या कहते हैं, पैसे मांगेंगे सिर्फ लक्ष्मी, यादगार कहां की हुई। इसका मतलब है कि महालक्ष्मी का जो रूप बनता है उस महालक्ष्मी के रूप में जो कलश को धारण करने वाली है ज्ञानेश्वरी, वो कोई अलग है, वो ज्ञान के कलश को धारण करती है, वजन होती है ज्ञान के कलश का, बांटने का काम पूरा नहीं होता उसके द्वारा, बांटने के काम के लिए कौन आती है, लक्ष्मी आती है। तो दाई भुजा दिखाते हैं वो लक्ष्मी, लक्ष्मी जो है वो बांट देती है, लेकिन ज्ञान में पूरी हो क्या, पूरा ज्ञान उसकी बुद्धि में कोई नहीं है, तो लक्ष्मी भी किसकी बच्ची हो जाती है, जगदम्बा की बच्ची हो जाती है। तो बताया कि लक्ष्मी से सिर्फ पैसे मांगते हैं, कौन से पैसे, आदि देवी जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है उसके पास सब आशाएं लेकर जाते हैं, और लक्ष्मी के पास सिर्फ धन की आशा लेकर के जाते हैं। तो सभी आशाएं तुम बच्चों की किस समय पूरी करते हैं, कौन, अरे जगदम्बा, जगदम्बा के द्वारा पार पे इस समय तुम्हारी सब आशाएं पूरी करते हैं। कौन सी आशा है? दुष्ट आशा है या अच्छी आशा है? जो शुभ आशाएं हैं वो तुम्हारी सब इस समय पूरी होती है जगदम्बा की। ये किसी को पता नहीं है क्या कि अभी संगम युग चल रहा है और इस समय जगदम्बा के द्वारा निमित्त बनती है जगदम्बा, जगदम्बा के द्वारा सर्व आशाएं पूरी होती। तो जब सब आशाएं जगदम्बा के द्वारा पूरी होंगी तो वो मीडिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। ये किसको पता नहीं है कि अम्बा सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, तुम जानते हो आधा कल्प के लिए हमारे सब रोग दूर हो जाते हैं, यहाँ तुमको मुक्ता मिल जाता है, माना होलसेल मिल जाता है, भक्ति मार्ग में रेजगारी मिलती है। मांगते हैं सब देवियों से है? भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? कोई किसी देवी को पकड़ता है, कोई किसी देवी को पकड़ता है। और ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग में तो हमें पता चल जाता है जगत पिता कौन है और जगदम्बा कौन है। बाकी जो देवियां हैं वो तो जगदम्बा की भुजाएं हैं ना, तो भुजाएं हैं और अम्बा अम्बा है, अम्बा के कंट्रोल में ही भुजाओं को चलना पड़े। तो भक्ति मार्ग में सब देवियों से मांगते हैं। मांगना किससे चाहिए? एक से मांगना चाहिए, कहना तो जगदम्बा की है। कौन? जो भी भुजाएं मददगार बनती है वो किसकी सेना है? जगदम्बा की सेना है। कोई से क्या मांगते हैं, कोई से क्या मांगते हैं, ऋद्धि सिद्धि विशिष्टे हैं, तो सब है भक्ति मार्ग। ये विद्यामय में नूद है। हनुमान की पूजा करने वाले भावना से करते हैं तो उनकी वो मनोकामना पूरी कर देते हैं। वो तो समझते हैं कि सब में परमात्मा है, सर्वव्यापी है, तो जो जिसकी पूजा करते हैं उससे उनको साक्षात्कार हो जाता है। फायदा कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में उतरते उतरते पतित बन गए हैं, अनेक प्रकार की पूजाएं करते फिर भी नीचे गिरते आए, पावन कोई नहीं। मनुष्य सृष्टि को पतित ही बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि नीचे गिरनी ही है। पांच तत्व कभी पतित बनते हैं तब तो जैसा सोना होता है वैसा जेवर बनता है। अगर पांच तत्व पतित न बने तो शरीर भी पतित नहीं बन सकता। ये ड्रामा को समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। सृष्टि का चक्र कैसे चलता है? भारत क्या था? इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर भारत इतना कंगाल क्यों बना है? कारण क्या है? है? भारत कंगाल क्यों बना? बाप को भूल गए, बाप की रचना को भूल गए, बाप की प्रवृत्ति को भूल गए, माता पिता को भूल गए। तो ये सब बातें बाप आकर के समझाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद क्या? गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
पर 9-6-86 का पैसा चला है। छोड़ दीजिए आकाश सिंहासन, धरती पर आ जाए। अब ऊंची स्टेज को छोड़ दे और नीची स्टेज में आ जाए। ऊंची स्टेज में रहने से तुम्हारा काम नहीं चलता क्या? ऊपर वाले को भी नीचे बुला लेना। नीचे नीचे सीखी के बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तोड़ जाता है। क्यों तोड़ जाता है? क्योंकि ऊपर से नीचे आएगा तो सर्वव्यापी कहाँ हुआ? अगर होता तो बुलाती क्यों? अब भारत बहुत दुखी है। याद करते हैं ड्रामानुसार ये सब गीत बने हुए। दुनिया वाले नहीं जानते, आप आते हैं पतितों को पावन करने के लिए। आप आपके भाषण छोड़ के क्यों आते हैं? क्योंकि ऊंची स्टेज में रह करके ऊपर रह करके पतितों को पावन नहीं बनाया जा सकता। डूबा हुआ होता है तो उसको निकालने वाले को भी क्या करना पड़ता है? डुबक लगानी पड़ती है। तो दुखियों को दुख से लिबरेट करने, सुख देने के लिए आते, बच्चे अब जान नहीं लेंगे। वही बाप आया हुआ है, बच्चों को पहचान मिल गई है कि वही बाप आया हुआ है। स्वयं वैसे बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि की आदि में व्यंत का राग सुनाता हूँ। इसलिए कि नई और पुरानी होती है, जैसे शरीर बचपन में नया होता है फिर पुराना होता है, नया शरीर पुराना शरीर दो नहीं कहने है, एक ही सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया भी एक ही, नई से अब पुरानी हुई। नई कब बनी इसे कोई भी बतलाए नहीं। बाप आकर के समझाते हैं बच्चे, जब नई दुनिया थी तो नया भारत था, सत्यु कहा जाता था, वही भारत अब पुराना बना है, इसको पुराना ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड ही फिर ओल्ड बनी, उसको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरूबर ये लक्ष्मी नारायण, आज सनातन देवी देवताएं उस दुनिया के मालिक थे। ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं अब निरंतर यही याद करो। क्या याद करो? बाप क्या समझा रहे हैं कि नई दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी नारायण थे, ये समझा रहे हैं। तो समझ में आ गया क्या कि नई दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी नारायण, वह नहीं यह लक्ष्मी नारायण थे, यह मन चित्र की तरफ इशारा किया, वो समझा तुमने? चित्र को समझा, चरित्र धारी को नहीं समझा। बाप परमधाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आया हुआ है। सारी महिमा उस एक की है। ब्रह्मा के तने में बैठ के बोलते हैं कि सारी महिमा उस एक की है। ऐसे क्यों? भविष्य की तरफ इशारा किया, स्वरूप की महिमा नहीं है। बैठ करके उस समय वाणी चलाई, सारी महिमा उस एक की है जो पार्ट परमात्मा पार्ट भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। इनकी महिमा कुछ भी नहीं है। इनकी मान ब्रह्मा की, दुनिया में ब्रह्मा के चित्र नहीं पूजे जाते, ब्रह्मा की मूर्ति नहीं बनाई जाती, मंदिर नहीं बनाए जाते, पूजा नहीं होती। इस समय तो सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ समझते ही नहीं है, इसलिए मैं आता हूँ। क्या समझाने के लिए आता हूँ? समझाने के लिए आता हूँ तो क्या समझाने के लिए आता हूँ? तुच्छ बुद्धियों की समझ में तो आता नहीं कि नई दुनिया के मालिक कौन है। तब तो गीत बनाया है, कौन सा नहीं, छूट भी दे आकाश से हसन सर्वव्यापि का ज्ञान तोड़ जाता है। हर एक का पार्ट तो अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं देह अभिमान छोड़, आत्माभिमानी बनो और आदर्श द्वारा शिक्षा धारण करो। क्या कौन सी शिक्षा है? राजयोग की शिक्षा क्या है? क्या शिक्षा है राजयोग की? नरसिंह नारायण वो तो लक्ष्य है, लेकिन शिक्षा क्या है? अपने घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, ये शिक्षा बच्चों को दे रहे। तो इसलिए मैं आता हूं, ये शिक्षा आदर्श द्वारा धारण करनी है। एक आगम द्वारा धारण करनी है, सभी आदर्श द्वारा है? कोई आगम ऐसा बच्चे नहीं जो कमल फूल समान बनने की शिक्षा धारण न कर पाए। कमल क्या करता है? कीचड़ में रहता है और कीचड़ में रहते हुए भी उपराम, एक बूंद भी कीचड़ की नहीं रह सकती, चिपक नहीं सकती। बने तो बाबा को चलते फिरते देखते, परंतु याद शिव बाबा को करो। इस बाबा में और शिव बाबा में क्या अंतर हुआ है? अरे इस बाबा के अंदर क्या शिव बाबा नहीं है क्या? माने ब्रह्मा दादा लेखराज के अंदर में शिव बाबा नहीं है? है तो, लेकिन वो रूप नहीं है बाबा का जो अविनाशी रूप है, जिसको कहा जाता है कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं। क्योंकि अकाल मूर्त को याद करेंगे तो हम भी मास्टर अकाल मूर्त बनेंगे, और जिसको काल खा जाए उसको याद करेंगे तो हम भी हमको भी काल खा जाएगा। ऐसे ही समझो, शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, शिव बाबा की ही याद रहेगी, ब्रह्मा है नहीं। बलिन का रूप हमको आंखों से दिखाई पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जाने। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा इनका शरीर कोई काम करे। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है, वो इस द्वारा पढ़ाते हैं, ये नहीं पढ़ाते। तुम्हारा ये टीचर नहीं है। कौन? ब्रह्मा टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वो है। याद उनको करना है, कभी जिस्म को याद नहीं करना है। बुद्धियोग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर के ज्ञान योग सिखाओ, क्या याद करते हैं? फिर से आकर के ज्ञान योग सिखाओ, फिर से माना परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखला ही नहीं सकता। बच्चे का मतलब क्या हुआ? दोबारा आओ, क्योंकि राजयोग का ज्ञान प्रवृत्ति में रह करके दिए। ब्रह्मा सरस्वती की प्रवृत्ति नहीं कहेंगे, वो तो उनकी बेटी थी। तो बोला फिर से आकर के राजयोग सिखाओ, अब बच्चों की बुद्धि में है, वो ही बैठे। सदगति का गति का ज्ञान सुनाते, फिर ये नाली प्रायलोप हो जाती है। वहां दरकार ही नहीं, राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में आने के लिए। ज्ञान लेने का मतलब क्या है कि ज्ञान लेने वाला दुर्गति में है, बुद्धि की गति दुष्ट गति की ओर जा रही है। तो मन बुद्धि का रुझान जब दुष्ट गति की ओर है, गिरती कला की ओर है, देह और देह के संबंधियों की तरफ बुद्धि खिंचती है, तो इससे साबित होता है कि दुर्गति है। तो सदगति के लिए ज्ञान दिया जाता है। सच्ची गति हो, मन बुद्धि की पहले सच्ची गति होगी फिर शरीर की होगी। पहले सच्ची गति क्या होगी मन बुद्धि की, कि देह और देह के संबंधों से बुद्धि निकलकर मनन चिंतन मंथन में लगेगी, आत्म चिंतन में लगेगी, परमात्म चिंतन में लगेगी और इस सत्य के आदि मध्य अंत के राज को जानने में लगेगी। बाकी देह और देह की संबंधों की दुनिया भूलने लग पड़े, बाकी तो सब है भक्ति मार्ग की बात है। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं सब भक्ति मार्ग की बात है। क्या कोई नाम का जाप करते हैं, शरीर को कष्ट देकर तपस्या तपते हैं, हाथ पांव बांध करके बैठ जाते हैं, वो क्या हुआ, शरीर को तपाना हुआ। खींच करके बिंदु की याद करते हैं, वो भी तपना हुआ। दान करते हैं, पुण्य करते हैं, ये सब भक्ति मार्ग है। इनसे मुझे कोई भी मिल नहीं सकता, क्योंकि दान करते हैं वो भी किसको करते हैं, पतितों को दान करते हैं। पतितों को दान करने से रिजल्ट क्या निकलेगा, अतिथि भी बने। मेरे से कोई नहीं मिल सकता, आत्मा के पंख टूट गए। पंख कौन से, ज्ञान योग के पंख टूट चुके हैं, इसलिए कहते हैं फिर से आओ। पत्थर बन गए माने पत्थर बुद्धि बन गए, पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़े। पारस कैसा होता है, पारस भी तो पत्थर होता है, है? पत्थर से पारस, पारस के लिए कहते हैं इसके छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। अब कोई ऐसा पारस पत्थर तो होता नहीं है, वास्तविकता क्या है, पत्थर बुद्धि की बात है। ऐसे ऐसे पत्थर बुद्धि जो परमात्म ज्ञान लेने से इतने तीखे बन जाते हैं कि उनके संसर्ग संपर्क में आने वाली आत्माएं भी उनके जैसी बन जाती है। पारस बुद्धि मनन चिंतन मंथन करने वाली बन जाती है। तो पत्थर से पारस बनाने के लिए मुझे आना पड़े। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, 400 मिसल संसार भरा हुआ है, अब सब खत्म हो जाए। सचिव में तो इतने मनुष्य होते नहीं है, नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े हो। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए नहीं मिलता, पुरानी रेतीली जमीन है, फिर नहीं हो जाएगी। वहां है ही एवरीथिंग यू, रेतीली जमीन की क्या बात होती है खास, उसमें पैदाइश कुछ नहीं होती क्योंकि इतना पानी नहीं मिल सकता, उसके लिए पानी बहुत ढेर सारा चाहिए। तो वहां एवरीथिंग न्यू होगा, नाम ही कितना मीठा, हेवन बहिष्ट, देवताओं की नई दुनिया। पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना, अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात। इसमें तो पुराने शरीर होते, इस पुराने शरीर को हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धियोग इसमें चला जाएगा। दूसरे एक ने क्या बोला कि तो पुराने शरीर को कोई भी हार का मतलब सिर्फ हार की बात नहीं हार भी कोई भी श्रृंगार की चीज गहना वगैरह पहनेंगे तो बुद्धियों को कहा जाएगा देह में चला जाएगा। जो बाबा कहते हैं हमको हार की दरकार नहीं हमको हार की दरकार नहीं तुम ही पूजी बनते हो पुजारी भी तुम ही बनते हो आके ही पूजी आके ही पुजारी बनते हो तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते। बाबा कहते हैं मैं न पूजी बनता हूँ न फूल आदि की मेरे को दरकार है। उसकी भी दरकार किसको तुम्हारे ऊपर ही फूल चढ़ाए जाते हैं मैं क्यों यह पहनूं? क्या 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 पहनूं? किसकी बात हो रही थी हार मैं गले का हार क्यों पहनूं? यानी फूलों का हार मैं क्यों पहनूं? इसलिए सब फूल माला आगे लेते नहीं है तुम पूजी बनते हो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनो अब पूजी कहाँ बनते हो सतयुग में या कलयुग में संगम पर पूजी बनते हो तो जब तुम पूजी बनो तो हार पहन ले। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलीवेड ओबीडियंट फादर हूँ टीचर भी हूँ सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रायल आदमी जब नीचे सही जानते हैं पहन करते हैं तो लिखते हैं मैं तो प्रेजेंट आदमी अपने को लाड कभी नहीं लिखेंगे यहाँ तो लिखते हैं श्री श्री फलाना एकदम श्री अक्षर डाल देते। तो बाप समझाते हैं अब इस शरीर को याद नहीं करो अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट सोने में खाद पड़ती है तो यहाँ खाद खाए भी पड़ती है आत्मा में ही विकारों की खाद पड़ती है। तो आत्मा को कब निर्लेप नहीं समझना चाहिए ये ज्ञान अभी तुमको है क्या कि आत्मा निर्लेप नहीं होती सिर्फ परमात्मा ही लेप छेपते रहे तो होता है उसको संग का रंग नहीं लगता। आधा कल्पित की जन्म के लिए प्रारब्ध तुम पाते तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं जो बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म बदल वाले बाप कहते हैं पहले सूक्ष्म शक्ति रचता क्या कहा देवताओं की शक्ति बाद में और जो पक्के ब्राह्मण हैं जनेऊधारी उनको क्या कहते हैं पक्का ब्राह्मण जिन्होंने 3 सूत्रों को धारण कर लिया माना 3 सूत्रीय ज्ञान जिनकी बुद्धि में बैठ जाता है कि वो 3 सूत्र कौन कौन से ब्रह्मा विष्णु और शंकर का प्रैक्टिकल रूप मूर्ति कौन सी जिनकी बुद्धि में ये बैठ जाता है वो है पक्के ब्रह्मा। तो पहले किसकी रचना रखता हूँ पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म रचना रखता हूँ तुम्हारे बुद्धि योग में प्रैक्टिकल में नहीं देखने में आएंगे लेकिन बुद्धि योग से तुम उनको देख सकते हो क्योंकि सूक्ष्म आकारी स्वरूप है कोई साकारी स्वरूप ऐसा नहीं है जिनको इन आंखों से देखा जा सके ज्ञान की दृष्टि से देख सकते हो। निर्वाण धाम ऊंच से ऊंच धाम है, आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंचे है। एक भगवान को सभी भक्ति याद करते हैं परंतु तमो प्रधान बन गए, तो बाप को भूल फिक्कर भित्तर सबकी पूजा करते रहते। जब तामसी बनती है, विविचारी बनती है, विविचारी पूजा कब से शुरू होती? द्वापर आने को होता तो द्वापर के अंत में तामसी स्टेज में, द्वापर से नहीं एकदम विविचारी पूजा शुरू होती। द्वापर में पहले फिक्कर बुद्धि में ठोक दी। फिक्कर बुद्धि किसे कहा जाता है? सब संगम युग की बातें हैं। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में ठिककर बुद्धि कौन से हुए? मिट्टी का ठेला ढेला, थोड़ी सी माया की ठोकर लगी और मिट्टी का ढेला टूट गया, अनिश्चय बुद्धि बन गया। तो समझते हैं कि ऐसों में भी भगवान आ जाता है, जिनको घड़ी घड़ी अनिश्चय पैदा होता है परमात्मा पार्ट पर। ऐसे में कोई परमात्मा आ सकता है क्या? परमात्मा तो अटल अखंड अडोल सितारे में प्रवेश करेगा या घड़ी घड़ी अनिश्चय दानों में प्रवेश करेगा? एक ही सितारा है जो कभी अपना स्थान नहीं छोड़ता, अटल रहता है। तो परमात्मा को ठिककर बुद्धि में नहीं आते, भीतर बुद्धि में भी नहीं आते। भीत माना दीवान, जो दीवान की तरह ज्ञान मार्ग में रोड़े बनकर के अटक जाए, न खुद ज्ञान में आगे बढ़े न दूसरों को ज्ञान में, ज्ञान के विस्तार में जाने दें, ऐसे भीतर बुद्धियों में परमात्मा प्रवेश नहीं करता। तो सब की पूजा करते रहते। अपन जानते हैं जो कुछ चलता है वो ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आ जोड़ता है तो वही घड़ी घड़ी होती रहे। पतंगा उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहे। तो जिसका जो भी ड्रामा में पार्ट है, भीतर बुद्धि बनने का है या पत्थर बुद्धि बनने का, वो पार्ट उसका कल्प कल्प का लुधा हुआ है। तो ये भी ड्रामा का सेकंड सेकंड रिपीट होता जाता है, पार्ट शूट होता रहता है, ये बना बनाया ड्रामा। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी होकर के देखते हो, एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता जाता है। पत्ता हिला ड्रामा पास हो, ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर हिलता है। भगवान का काम पत्तों को हिलाना है क्या? नहीं, ये सब ड्रामा की दूध है, इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही आकर के राजयोग सिखलाते और ड्रामा की नाली देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं, तब संग में ऊपर घड़ी की घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर यह नहीं रहेगी। बच्चे हमेशा ऐसा ही समझो कि हमको बाप पढ़ाते, हम गार्डली स्टूडेंट हैं। कैसे पढ़ाते हैं बाप? सर्वव्यापी होकर पढ़ाते हैं या एक व्यापी होकर पढ़ाते हैं? उल्टा अर्थ नहीं समझा जाए कि हमको बाप ही पढ़ाते हैं। कि जो भी संदली पे बैठा, क्या समझो कि हमको बाप ही पढ़ाते हैं। तो क्या बाप सर्वव्यापी हो गया क्या? सर्वव्यापी की बात नहीं, मुकरण रथ में भी यह नहीं समझना है कि हमको ये देहधारी पढ़ाता है। इस देहधारी की आत्मा याद ना आए, पढ़ाने वाला कौन है? सुप्रीम सोल। तो हम गार्डली स्टूडेंट हैं। भगवान वास में तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी इन लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं। कहाँ पूजेंगे? सचिव में पूजेंगे? सचिव में तो कोई राजा होते ही नहीं, हो एक ही राजा होता है, तो बात कहाँ की है? अरे संगम युग में जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं, नंबरवार पुरुषार्थ संसार, वो सब किसको पूजेंगे? एक लक्ष्मी राय। तुम बच्चे समझ गए हो, हम सो पूजे थे फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते हैं, बाबा कहते हैं ना मैं पूजी बनता हूँ और ना मैं पुजारी बनता हूँ, इसलिए ना मैं फूल पहनता हूँ और ना मेरे को फूल पहनाने पड़ते हैं। क्या न मैं फूल पहनता हूँ और न फूल पहनाता हूँ? पहनता भी मैं नहीं हूँ और पहनाता भी मैं नहीं। तुम पहनते भी हो और दूसरों को दूसरों के गले के गले में हार बना करके फूल डालने भी पड़ते हैं। कब की बात है? ये बात कब की है? फूल पहनना और फूल पहनाना, संगम में तो सब कुछ शूट होता ही है, लेकिन द्वापर कलयुग में भी ये ड्रामा चलता है। तो हम फूल क्यों स्वीकार करो? फूल कौन स्वीकार करे है? बच्चे फूल स्वीकार करेंगे, लेकिन कब? जब बच्चे पूज्य बने। अभी तुम स्वीकार नहीं कर सकते, कायदे अनुसार उन्हों को हक है जिनकी आत्मा और शरीर प्योर है। वही हकदार है फूलों के। वहां स्वर्ग में तो है खुशबूदार, फूल खुशबू के लिए होते हैं और गले में हार बनाकर पहनने के लिए भी होते हैं। क्या फूल काटे नहीं? फूल बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बन। बनते हो बनते हो के रुद्र के गले का हार बनते हो? पहले रुद्र के गले का हार बनते हो, फिर विष्णु के गले का हार बनते हो। और रुद्र किसको कहा जाता है? शिव को कहा जाता है। और अभी शिव बाबा ने क्या कहा? मैं तो हार पहनता ही नहीं, तो तुम रुद्र के गले का हार कैसे बनोगे? रुद्र का मतलब ये है कि वो जिस साकार में प्रवेश करता है उसके गले के हार तुम बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठ, जिन्होंने जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबर वार तो है, बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत अच्छा संग से बोले, जैसे दुकान में होता है सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैसेंजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है। तो ये भी ऐसे तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पाने क्या? जहाँ जीत वहाँ जन्म मिलता है, ये नियम है। बच्चा अगर माँ बाप के घर में जन्म लेता है, टट्टी पेशाब साफ कराता है, तो जरूर उसने पूर्व जन्म में उन माँ बाप की आत्माओं के ऊपर कर्मों में विजय पाई है, इसलिए वो आकर के बच्चा बनता है। तो कभी बाप बना ही नहीं है, आज तक ये कभी माँ बाप नहीं बना। तो तुम बंडल खाते हो, माता पिता से आगे कैसे हम जा सकते हैं?
जाएगा। कैसे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हो? माता पिता पर भी, कर्मों पर, कर्मों का जो हिसाब किताब है उसमें अगर माता पिता पर भी तुमने विजय पहनी तो क्या होगा, तुम माता पिता के बच्चे जाकर बने। बाप तो बच्चों को मेहनत करके लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने के लिए। इसलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण। क्या कहा? नर से एक प्रिंस बनने का पुरुषार्थ नहीं बताया, वो तो अगले जन्म में बनेंगे। लेकिन गायन क्या है? नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो, वो इसी जन्म में बनना है। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है, ये किंगडम स्थापन हो रही है तो राजा ही में वैरायटी पद है। माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करो, बच्चों आदि को भी बल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर के रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली, अच्छा तो फिर रोने की बात नहीं रही। परंतु ये तो है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, वो तो सिर्फ कथाएं सुनाते रहते हैं लेकिन मोहजीत बनते नहीं है। एक राजा की कथा सुनाते हैं, मोहजीत राजा की, फिर कोई दुख भी नहीं होता है क्योंकि एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। फील कब नहीं होता है? जब मोहजीत बनते, वहां कब कोई बीमारी आदि नहीं होती, अगर हेल्दी निरोगी काया रहती है 21 जन्म के लिए। 21 जन्म के लिए निरोगी काया गिनाओ, कौन कौन से 21 जन्म? त्रेता के 12, सत्युग के 8 और एक निरोगी जन्म संगमयुग का। तो अभी है, अभी तो नहीं कहेंगे निरोगी जन्म, अभी तो रोगी जन्म है। तो जरूर संगमयुग में ही ऐसा पीरियड आना है कि नंबर वार पुरुषार्थ संसार निरोगी भी बच्चे बनेंगे। बच्चों को साथ साक्षात्कार, वहां रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयं बराज कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया। वो पार्ट सब बीत गया, बीत गया मन, जो बीत गया फिर रिपीट नहीं होगा क्या? होगा, लेकिन आज में जो बीता है वो बंद आंखों का साक्षात्कार और आप किस रूप में रिपीट होगा? तो बुद्धियों की आंखों से देखेंगे, देखते हैं। उस समय तो इतना ज्ञान नहीं था, किस समय? आज में ज्ञान ही नहीं था और अभी तो इतना ज्ञान है। तो ज्ञान बुद्धि का विषय और साक्षात्कार भावना की चीज। भावना वालियों को, आत्माओं को होता है साक्षात्कार और बुद्धिवादियों को होता है ज्ञान। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है जोर से। ये भी सब ड्रामा नुदा हुआ है, वंडर है ना, परम पिता परमात्मा का भी कितना भारी पार्ट। खुद पैर समझाते हैं, भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ करके मैं कितना काम करता हूँ। परम धाम में काम करते हैं क्या? कौन काम करता है? बिंदु वहां परम धाम में बैठ करके काम करता है, क्या काम करता है? नीचे तो कलप में मैं एक ही बार आता हूँ, बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर के पढ़ाता है ये बात गुम कर दी। तो जो गुम कर दिए वो तुम उजागर करो। क्या गुम कर दिए? निराकार परमात्मा कैसे पढ़ाता है? निराकार का मतलब निराकारी स्टेज। मन शरीर तो है, उस शरीर की यादगार लिंग दिखाया जाता है, लेकिन उसको हाथ पांव नहीं दिखाए जाते, कर्मेंद्रियां नहीं दिखाई जाती। क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि ऐसी स्टेज दिखाई है चित्रकार ने कि उसको कर्मेंद्रियां होते हुए भी जैसे कि नहीं है। तो कर्मेंद्रियों का भान न होना उसको लिंग रूप दिखाया है, तो शरीरधारी और उसमें बिंदु सुप्रीम सोल प्रवेश होता है। तो गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया है साकार का, तो निराकार से प्रीति ही टूट गई। भी शब्द यहां क्यों लगाया? भक्ति मार्ग वालों ने गीता में भी नाम डाल दिया और यहाँ ज्ञान मार्ग में भी, जो मुरली है हमारा सच्ची गीता उसमें क्या दिया? पिताश्री का नाम डाल दिया। तो उससे रिजल्ट क्या हुआ? जब पिताश्री ही शिव बाबा हो गया तो जो असली निराकारी स्टेज वाला भगवान है का उसके प्रति प्रीति टूट गई। ये तो परमात्मा ने ही आकर के सहज राजयोग सिखाया है और दुनिया को बदलाया है। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्कर को अभी तुम समझ गए हो, मनुष्य कुछ नहीं जानते। कौन से मनुष्य? जो सन्मुख नहीं है वो नहीं जानते, और तुम सन्मुख हो तो समझ गए हो। सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। तो बाप समझाते हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा ऐसे ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन है? वो फादर भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। कैसा गॉड फादर? जो एक ही शरीर से तीनों हो। दुनिया में ऐसे नहीं होता कि वो बाप भी हो, वो टीचर भी हो, वो गुरु भी हो। लेकिन यहाँ क्या विशेषता है? बाप के पार्ट की ये पहचान है कि उस बाप का कोई बाप नहीं, वो सबका बाप, बापों का भी बाप, धर्म पिताओं का भी वो पिता है। कयामत में भल धर्म पिताएं प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन वो धर्म पिता है उसका बाप नहीं बनेंगे। धर्म पिताओं को रियलाइज करना पड़ेगा कि ये हमारा भी बाप है और वो टीचर भी, सुप्रीम टीचर, जिसका कोई कोई टीचर नहीं, कोई उसको टीच नहीं कर सकता, कोई उसको समझा नहीं सकता, वो सबको समझाता है। और सतगुरु भी कोई है, उसकी गति सदगति कोई नहीं कर सकता, वो सबकी सदगति करने वाला है। तो ये भी बाप की पहचान है कि एक ही शरीर के द्वारा वो बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। कि बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो वो जरूर कहेंगे हमारा फादर टीचर है, परंतु वो फादर फिर गुरु भी हो? ऐसे नहीं होता है। टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कब नहीं कहेंगे? इनका फादर भी टीचर था, इनका ब्रह्मा का है, पढ़ाते थे, हम भी पढ़ते थे। क्या बात? इनका माना किनका? ब्रह्मा का। फादर टीचर था, पढ़ाते थे, कौन पढ़ाते थे? ब्रह्मा का फादर जो टीचर था वो पढ़ाते थे और हम भी पढ़ते थे, ये हम किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने कहा। हम माना एक होता है या दो? कम से कम दो होना चाहिए हम में, तो कौन दो हुए? कैसे, किसके लिए कहा? इंट्रोड्यूस हम शब्द किसके लिए किया? हम पढ़ते थे, हम दोनों, दोनों का मतलब रामकृष्ण की आत्माएं भी पढ़ती थी, हम पढ़ते थे। वो है हद का फादर और टीचर, और ये है बेहद का फादर और टीचर। वो हद में भी बात लागू होती थी कि हम दोनों पढ़ते थे उस टीचर से। कौन से टीचर थे? हद के टीचर से, हद के टीचर से पढ़ते थे। और बाद में फिर क्या हुआ? फिर बेहद के टीचर से अब
पढ़ रहे
हैं। अब भी पढ़ रहे हैं। कौन कौन? रामकृष्ण की आत्मा एक ही शरीर में बैठ करके पढ़ाई पढ़ती है। तुम अपन को गॉडली स्टूडेंट समझो, तुम भी आहो भाग्य। गॉड फादर तुमको पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है। तू कितना मीठा बाबा है, मीठी चीज को याद किया जाता है, जैसे आशिक मासूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है। बस एक दो को देखते रहते, तुम्हारा फिर प्यार है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, पतित दुनिया पतित शरीर में आकर के हमको इतना ऊंच बनाते हैं। इसमें ज्ञान के सागर और प्यार के सागर की क्या बात हो गई है? इसमें ज्ञान सागर और प्यार के सागर की बात क्या हुई? ज्ञानी किसको कहा जाए? ज्ञानी माने जानकार, जानने वाला। किसको जानने वाला? आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जानने वाला। जो आत्मा को रूप में आत्मिक रूप में देखने वाला होगा, आत्मज्ञानी होगा, वो कभी देह को नहीं देखेगा। ऐसे नहीं कि काली कलूटी बैंगन लूटी देह है तो दूर 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 फिरता रहे, उसको पास भी नजदीक भी ना आने दे, तो उसको ज्ञानी ज्ञानी नहीं कहा जाएगा। तो वो ज्ञान का सागर है और फिर प्रेम का सागर है। कैसे पता चले? पतित दुनिया में आता है और पतित शरीर में आता है, सब आ जाएगा सागर, माने सबको अपने अंदर समा लेगा, सारी को भी अपने अंदर समा के रखता है। कितना हमको ऊंच बनाते हैं, गायन भी है मनुष्य से देवता की कर्पण लागी वार, सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। देवता बनाने में देर नहीं लगती, एक सेकंड में ले जाते हैं। तो ये 50-56 वर्ष के खाते में गए हैं? ये किस खाते में गए? ये निश्चय पैदा करने में जाते हैं। निश्चय नहीं होता कि परमात्मा बाप का परमात्मा पार्ट बजाने वाला असली स्वरूप कौन सा है। बार बार निश्चय अनिश्चय ये चक्र चलता रहता है। अगर एक बार पक्का निश्चय बैठ जाए तो जैसे आत्मा एक सेकंड में स्वर्ग में उड़ने लगेगी, सुख का अनुभव करने लगेगी, दुख उसको अनुभव नहीं हो सकता। सेकंड में मनुष्य देवता बन पड़ते हैं, ये है एम ऑब्जेक्ट। उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा ना, मूत पलीती कपड़ धोए, ये सिख धर्म में इसका गायन क्यों है विशेष है? गुरु नानक के कपड़े ज्यादा धोए होंगे है? सिख धर्म का गायन इसलिए है कि अमृत वाणी में बोला हुआ है, कन्यादान में सबसे आगे जाने वाली धरणी कौन सी रही? पंजाब। बेसिक नॉलेज में भी सबसे आगे जाती है और एडवांस नॉलेज में भी पंजाब की धरणी, पंजाब का खून कन्यादान में सबसे आगे जाता है। और सफलता भी किसको मिलती है? अगर कुमारों को पहले सफलता मिलती है कि अगर कुमारों को मिलती है कि कुमारों को मिलती है कि कुमारियों को मिलती है? क्यों क्यों सफलता मिलती है? ये नहीं, मम्मा और बाबा का सवाल नहीं है, सफलता कुमारियों को क्यों मिलती है? क्योंकि पवित्रता होती है उनमें, पवित्रता से ही सब प्रकार की सफलता मिलती है। पवित्र जितना होगा उतना ज्ञान मार्ग में भी सफलता प्राप्त करेगा, और जितना अपवित्र होगा उतना ज्ञान योग की प्रारब्ध जल्दी प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो नानक ने भी कहा, नानक को क्यों उठाया था? सिख धर्म में ये विशेष गाय ने मूत पली थी, कपड़ धोती, कपड़ मन शरीर रूपी वस्त्र, कैसा वस्त्र? मूत पली थी, कपड़ धोए, धोए किसने? क्या गुरु नानक ने? वास्तव में गुरु नानक को कोई भगवान नहीं है, गुरु नानक ने तो ये महिमा गाई है भगवान के लिए कि भगवान ने आकर के जो मूत पली थी वस्त्र है उसको साफ किया। लेकिन किसका? जो देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडर बनता है, फाउंडेशन बनती है जो आत्मा। सब धर्म है विदेशी विपरीत धर्मों में से, विधर्मों में से, लेकिन एक ही धर्म ऐसा है जो देवी देवता सनातन धर्म की पवित्रता में नजदीक है। कैसे? सब धर्मों में विचार फैल जाता है, सन्यासी भी अंतिम जन्म में जाकर के पूरे विचारी बन जाते, विदेशों में जाकर के सब कुछ ग्रहण करने वाले बन जाते। लेकिन सिख धर्म एक ऐसा है जिसमें अंत तक ये बात अभी भी चली आ रही है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो ये लक्ष्य सोप है ना, कौन? श्री नारायण। जिस तन में परमात्मा प्रवेश करता है, जो नर से नारायण बनता है, मुकर रथ बनता है, वो कौन सा सोप हुआ? लक्ष्य सोप हुआ। तो खूब भेजो, जल्दी से सफाई हो जाए। बाबा कहते हैं मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, है ना? मैं साबुन नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं धोबी हूँ, मैं तो साबुन को घिसने वाला हूँ। तो सोप कौन हुआ? है? जो शरीर धारण किया है वो ही क्या हुआ? लक्ष्य सोप। लक्ष्य सोप माना नारायण। नर से क्या बनना है? नारायण। तो मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता, ऐसा धोबी कब देखा है? ऐसा धोबी? कोई धोबी ये कहे कि हम तुम्हारे कपड़े धो देंगे, अगले जन्म में आके ले लेना, तो ऐसे धोबी को कपड़े डालने जाओगे? मोहन भाई कपड़े डाल के आए ऐसे को? वो अगर कहता है अगले जन्म में दे दो, देते ही नहीं। कब दे के आए? मैंने कहा अभी अभी ले जाना, इसी जन्म में। तो इसी जन्म में कपड़े बढ़िया करके अगर ऐसे धोए तो सब कोई तैयार होगा कपड़े धुलाने के लिए। तो यह है कंचन काया बनने वाला पॉइंट साबित होता है इसमें। कैसे? इसी जन्म में हमारे शरीर रूपी वस्त्र साफ करता है, आत्मा ही का ही मैल नहीं उतारता सिर्फ, लेकिन शरीर रूपी वस्त्र का भी मैल उतार देता है। शरीर रूपी वस्त्र भी इसी जन्म में शुद्ध होना है, अगले जन्म में प्राप्ति होने की बात नहीं है। तो आत्मा जो बिल्कुल काली हो गई है उनको योग बल से इतना स्वच्छ बनाता हूं। तो इनको कभी याद न करना पड़े, इनको जो विनाशी कपड़ा है उसको याद न करो, किसको याद करो? जो अविनाशी वस्त्र है, नर से नारायण बनता है, आनंद पाठ बजाने वाला है, जिसका विनाश नहीं होने वाला है, उस स्वरूप को याद करो। ये सारा कार्य शिव बाबा का है। क्या कहा? तो फिर गलतफहमी हो जाए कि ये सोप का काम है या गधे का काम है। धोबी का गधा अलग होता है, धोबी अलग होता है और उसका साबुन, साबुन अलग होता है। काम किसका होता है कपड़ा धोने का? धोबी का। तो उनको याद करो, इनसे मीठा वो है, इनसे मीठा ब्रह्मा से भी जाते मीठा वो है। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आंखों से ये ब्रह्मा का रस देखने में आता है, परंतु याद शिव बाबा को, इन आंखों से तो रथ ही दिखाई देगा, लेकिन याद किसको करो? शिव बाबा को याद करो जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको पौड़ी से हीरे जैसा बनाएगा। तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा कौड़ी मिसल बन पड़ी, कौड़ियों की ही याद आती रहती है, बुद्धि में अंधेरा ही अंधेरा आ जाएगा। तो क्या करना है? बाप को याद करो तो तुम हीरे मिसल बन जाएंगे, हीरो पाठधारी बन जाएंगे। कहाँ हीरा और कहाँ कौड़ी? तो कौड़ी मिसल बुद्धि अब नहीं बनाना, लेकिन हीरे मिसल बुद्धि बनाना है। बाप को याद करना है, वो बाप हीरे जैसा बनाया है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे बच्चों के माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्ची।